बहुत से लोग 25 साल की उम्र में मर जाते हैं और उन्हें तब तक दफनाया नहीं जाता जब तक कि वे 75 साल के नहीं हो जाते। ये कहावत कहीं सुनी लगती है ना? यह प्रसिद्ध उद्धरण अमेरिका के पहले पोस्टमास्टर जनरल की है, मगर हम में से अधिकांश लोग उन्हें आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों में से एक मानने की गलती कर बैठते हैं। अमेरिका में शायद वही एक ऐसे एकमात्र शख्स हैं जो राष्ट्रपति ना होकर भी राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। हाँ दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी प्रेसिडेंसी का पद नहीं संभाला। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ books.com लिट ज्ञान के एक और मनोरम एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुभाषनी। आज मैं आपके लिए एक ऐसे साधारण व्यक्ति की दास्तां लाई हूँ जो आया तो था अज्ञात वातावरण से, लेकिन अपने आविष्कारों से उसने पूरी बौद्धिक दुनिया को चकाचौंध कर दिया। चलिए सुनते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा किताब की समीक्षा। मैंने यहाँ उनके जीवन के कुछ मुख्य किस्सों का खुलासा किया है। 6 जनवरी 1706 को मिल्क स्ट्रीट बॉस्टन में जन्मे बेन परिवार की 8वीं संतान थे। उनके पिता जोसाया के कई विभिन्न व्यवसाय थे। वे मोमबत्तियां बनाने और बेचने का काम करने के साथ साथ साबुन बॉयलर भी थे, मगर अमरीकी कॉलोनी में जाने से पहले उनका कपड़ों की डाइंग का व्यापार था। वे अपनी दूसरी पत्नी एबेया फॉल्जर के साथ इंग्लैंड से अमरीका आए। उनकी पत्नी घर और उनके 10 बच्चों की देखभाल करती थी। हम सभी जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अमरीका के नागरिक कार्यकर्ता थे, लेकिन हम में से कितने जानते हैं कि मिस डूगुड उनका पेन नाम था। राजनयिक और राजनीतिक विचारक बनने से बहुत पहले 12 साल की उम्र में बेंजामिन अपने भाई जेम्स की प्रिंटिंग शॉप में अप्रेंटिस के रूप में काम किया करते थे। बेन ने न्यू इंग्लैंड करंट पत्रिका में लिखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यह पत्रिका उनके भाई प्रकाशित किया करते थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब कोई और चारा नहीं था, बेन ने साइलेंस डूगुड नामक एक विधवा की झूठी पहचान बनाई और उसके नाम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में पत्र लिखना शुरू किया। मिस डूगुड की लोकप्रियता बढ़ी, मगर जब उनके भाई को उनकी इस शरारत का पता चला तो वे उन पर खूब नाराज हुए। बाद में जब मिस डूगुड को पाठकों से शादी के प्रस्ताव आने शुरू हुए तो फ्रैंकलिन ने इस खेल को खत्म करना उचित समझा। क्या आप विश्वास करेंगे कि अमेरिका के एकमात्र संस्थापक जनक, जिन्होंने सभी 4 प्रमुख दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जिनके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ, उनके पास केवल 2 साल की औपचारिक स्कूली शिक्षा थी? इन दस्तावेजों में स्वतंत्रता की घोषणा, फ्रांस के साथ गठबंधन की संधि, 1783 में ग्रेट ब्रिटेन के साथ शांति संधि और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान शामिल हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में साइन करने वाले बेंजामिन ग्रामर स्कूल में सिर्फ 1 साल पढ़े थे? फ्रैंकलिन का परिवार उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता था और इसीलिए 10 साल की उम्र में वे स्कूल से बाहर आ गए। वह एक स्वसिख्या आदमी थे, सेल्फ टॉट मैन, जो हमेशा आत्म सुधार के तरीकों की तलाश करते रहते थे। विज्ञान और साहित्य के जुनून के अलावा फ्रैंकलिन अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, इतालवी और स्पैनिश सहित 5 भाषाओं में बात कर सकते थे। अगर आपकी भी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है, चिंता करने के बजाय इस प्राकृतिक अशिक्षित जीनियस से प्रेरणा लें। औपनिवेशिक अमेरिका में घरों को अंगीठी द्वारा गर्म किया जाता था। जब फ्रैंकलिन ने देखा कि इसके लिए ढेर सारी जलाऊ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो 1742 में उन्होंने एक स्टोव का आविष्कार किया। यह एक मेटल लाइंड अंगीठी थी जो कमरे के बीचों बीच खड़ी की जाती थी। ये एक खुली अंगीठी की तुलना में अधिक गर्मी, कम धुआं और कम लकड़ी का उपयोग करती थी। यह कास्ट आयरन की भट्टी कमरे के बीच से सभी दिशाओं में गर्मी विकीर्ण कर सकती थी और उसकी लोहे की दीवारें गर्मी को सोख लेती थी, जिसके कारण आग बुझने के बाद भी लंबे समय तक कमरे में गर्मी रहती। सन 1730 में एक जहाज में आग लग गई। आग घाट में फैली और एक गोदाम सहित 3 पड़ोसी घर भी जल गए। इस घटना के बाद फ्रैंकलिन सामुदायिक सेवा की हिमायत करने लगे। सन 1733 में पेंसिल्वेनिया गैजेट में उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने चर्चा की कि आग रोकने और आग से संपत्ति बचाने के लिए बेहतर तरीकों और संगठित नागरिकों का एक समाज या समूह की आवश्यकता है। 7 दिसंबर 1736 को उन्होंने यूनियन फायर कंपनी की सह स्थापना की। पहली ब्रिगेड का गठन 26 स्वयं सेवकों का था। प्रत्येक सदस्य को 6 बाल्टी पानी और संपत्ति बचाने के लिए 2 लिनन बैग लाने होते थे। यही कारण है कि यह बेंजामिन फ्रैंकलिन की बकेट ब्रिगेड के नाम से जानी जाती है। इस तरह उन्होंने अमेरिका के पहले स्वयंसेवक फायर फाइटिंग एसोसिएशन की स्थापना की। फ्रैंकलिन अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध बहुश्रुत थे, जैसे कि प्रिंटर, पोस्टमास्टर, राजदूत, लेखक, वैज्ञानिक और संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता। इसके अलावा वे एक आविष्कारक थे जो आम समस्याओं का समाधान करते और नई तकनीक का नवाचार करते। 1746 में गलती से बिजली का झटका लगने के बाद वे अपना ध्यान बिजली के हमलों से इमारतों और उसके अंदर के लोगों को बचाने की संभावना पर केंद्रित करने लगे। यह था उनका आंधी से पतंग उड़ाने का प्रसिद्ध प्रयोग, जिसमें एक धागे के सिरे पर धातु की चाबी लटकाई गई थी। 1752 में 1 जून की दोपहर को फिलाडेल्फिया शहर पर बादल मंडरा रहे थे। अंधेरा होने लगा था। शहर के अधिकांश नागरिक घर के अंदर थे, लेकिन बेंजामिन बाहर थे, जैसे कि वह इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हों। वे बिजली की विद्युत प्रकृति प्रदर्शित करना चाहते थे और ऐसा करने के लिए उन्हें आंधी की जरूरत थी। उन्होंने अपनी सभी सामग्रियां इकट्ठी की। एक बड़े रेशम की रुमाल से बनी एक साधारण पतंग, एक सुतीली, एक रेशम की डोरी, एक लेडन जार जो आदिम कैपेसिटर था जिसमें विद्युत चार्ज स्टोर कर सकते थे, और एक लंबी तार। पतंग के ऊपर उन्होंने बिजली की छड़ी का काम करने के लिए एक तार अटैच किया। पतंग के नीचे उन्होंने एक सुतीली अटैच की और उसके साथ उन्होंने रेशम की डोरी जोड़ी। अंतिम टुकड़ा था धातु से बनी एक चाबी। सुतीली बारिश में गीला होने पर जल्दी से विद्युत चार्ज कंडक्ट करेगी और उसे धातु की चाबी को भेजेगी और वहां से लेडन जार तक प्रसारित करेगी। सूखी रेशम की डोरी फ्रैंकलिन के हाथ में थी। अपने बेटे विलियम की मदद से उन्होंने पतंग उड़ाया और दोनों आंधी का इंतजार करने लगे। जब फ्रैंकलिन ने चाबी की ओर अपना हाथ बढ़ाया, चाबी के नेगेटिव चार्जेस उनकी उंगली के पॉजिटिव चार्जेस की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने एक चिंगारी महसूस की। लेडन जार का उपयोग कर फ्रैंकलिन ने उस बिजली की आग, जैसे कि वह उसे कहते थे, को इकट्ठा किया। शायद यह सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था जिसने बिजली की छड़ी के आविष्कार और पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को समझने में मदद की। आकाशीय बिजली और विद्युत के बीच का कनेक्शन पहले से ज्ञात था, मगर पूरी तरह से समझा नहीं गया था। उन्होंने कंडक्टर, कंडेंस, आर्मेचर, बैटरी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और डिस्चार्ज जैसे शब्दों का निर्माण किया और बिजली उत्पन्न करने, स्टोर करने और प्रसारित करने के नए तरीकों की खोज की। उन्होंने दिखाया कि बिजली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी प्लस और माइनस के साथ एकल तरल पदार्थ थी और ना कि दो प्रकार के तरल पदार्थ, जैसा कि उस समय सोचा जाता था। इस सफल प्रदर्शन के बाद फ्रैंकलिन ने बिजली के साथ अपना काम जारी रखा और अपनी बिजली की छड़ी के आविष्कार को पूरा किया। 1753 में उन्हें रॉयल सोसाइटी से प्रतिष्ठित कोपले मेडल प्राप्त हुआ, जो उनके बिजली पर जिज्ञासु प्रयोगों और टिप्पणियों के लिए दिया गया था। वे ब्रह्मांड के आंतरिक कामकाज को समझने के लिए लगातार उत्सुक थे और इस वैज्ञानिक समझ को चतुराई से इस्तेमाल कर आविष्कारों और नवाचारों के माध्यम से लाभ उठाते थे। अपने जोखिम भरे पतंग प्रयोग के साथ साथ फ्रैंकलिन ने कई अन्य प्रयोग भी किए। वे भी खतरनाक थे, इतना कि वे लगभग 2 बार मर भी सकते थे। एक बार पक्षाघात से पीड़ित एक आदमी को ठीक करने के लिए उन्होंने बिजली के झटके का उपयोग करने की कोशिश की तब, और दूसरी बार जब उन्होंने बिजली से एक टर्की को मारने की कोशिश की तब। उन दिनों कैथेटर कठोर मेटल ट्यूब का हुआ करते थे और काफी दर्दनाक थे। जॉन बेन के बड़े भाई गुर्दे के पथरी से पीड़ित थे और इस विषय ने बेन को अपने भाई की असुविधा कम करने के लिए 1752 में एक बेहतर मूत्र कैथेटर का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ट्यूबों के टिके हुए भागों से एक लचीला कैथेटर तैयार किया। उन्होंने एक चांदी के काम करने वाले से अपना डिजाइन बनवाया और फिर तुरंत अपने भाई को उसे भेज दिया। पोस्टमास्टर के रूप में अपनी भूमिका के दौरान उनका उत्सुक दिमाग यह जानना चाहता था कि फिलाडेल्फिया और बॉस्टन के बीच वे गाड़ी से कितनी दूर यात्रा कर रहे थे। हालांकि ओडोमीटर की अवधारणा प्राचीन काल की है, फ्रैंकलिन ने अपना वर्शन बनाया। उनका कॉन्सेप्ट था घोड़े गाड़ी के पीछे के पहियों में एक गियर डिवाइस अटैच करना, पहिए की परिधि निर्धारित करना, 1 मील की यात्रा करने के लिए आवश्यक परिक्रमणों की संख्या करना, और उस डिवाइस को यात्रा की गई दूरी को पंजीकृत करवाना। उनके कैरिज व्हील द्वारा किए गए हर 400 परिक्रमण पर डिवाइस में एक मील क्लिक होता, जिसका मतलब है 1.6 किलोमीटर। मेरे सभी आविष्कारों में से ग्लास हारमोनिका ने मुझे सबसे अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि दी है, ऐसा फ्रैंकलिन ने 1761 में डिजाइन किए गए संगीत वाद्य यंत्र के बारे में लिखा था। अंग्रेजी संगीतकारों से प्रेरित होकर फ्रैंकलिन ने इसे बनाया। असल में पानी से भरे ग्लास के किनारों के चारों ओर अपनी उंगलियों को पारित करके संगीतकार ध्वनियां बनाया करते थे। फ्रैंकलिन ने ग्लास ब्लोवर के साथ काम करके कम भोजल तरीकों से वही संगीत फिर से बनाया। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में इस उपकरण का आविष्कार किसने किया था। फ्रैंकलिन ग्लास हारमोनिका को पूर्णता प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। उनका डिजाइन इतना अभिनव और अद्वितीय था कि बीथोवन, स्ट्रॉस और मोजार्ट ने इसके लिए संगीत की रचना की। जैसा कि हमने पहले देखा कि फ्रैंकलिन किताबों के प्रेमी थे। जब वे बच्चे थे उन्होंने किताबें खरीदने के लिए एक एक पैसा बचाया, अधिक पुस्तक खरीदने के लिए पैसे बचाने के लिए, यहाँ तक कि 16 साल की उम्र में वे शाकाहारी बन गए। और जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका घर फर्श से छत तक बुकशेल्फ से भर गया। हालांकि 5 फीट 11 इंच पर बेन काफी लंबे थे, लेकिन उच्च अलमारियों में रखे गए पुस्तकों तक पहुंचना एक चुनौती थी। इसीलिए 1786 में फ्रैंकलिन ने लंबी बाह यानी लॉन्ग आर्म का आविष्कार करके इस समस्या को हल किया। लॉन्ग आर्म एक लकड़ी का डंडा है जिसके अंत में पकड़ने वाली दो उंगलियां होती हैं। इस डंडे का एक केबल खींचने पर उंगलियां किताब को पकड़ लेती हैं और वे ऊंचे शेल्फ से किताब उठा सकते हैं। कितना सरल, अकलमंद और प्रभावी आविष्कार था ये, है ना? आखिरकार उनके पढ़ने के प्रेम और ज्ञान की प्यास की वजह से अमेरिका में सार्वजनिक ऋण पुस्तकालय का निर्माण हुआ। कई अन्य प्रतिभाओं के बीच बेंजामिन एक कुशल शतरंज खिलाड़ी भी थे। उन्होंने इस पर एक प्रसिद्ध निबंध भी लिखा है, शतरंज की नैतिकता, जिसमें खेल खेलने के आचरण के नियमों का विस्तृत रूप से वर्णन है और वे शतरंज को अमेरिका में एक लोकप्रिय खेल बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके लिए उन्हें 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स चेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हम में से अधिकांश की तरह फ्रैंकलिन ने पाया कि बुढ़ापे में उनकी दृष्टि बदतर हो रही थी और उन्हें निकट और दूरदर्शिता दोनों थी। चश्मे के दो जोड़ों के बीच स्विच कर करके वे थक गए थे। उन्होंने डबल चश्मे का आविष्कार किया, जिसे हम अब बायफोकल्स कहते हैं। अपने दो जोड़े लेंसों, एक पढ़ने वाली और दूसरी दूरी वाली से आधे आधे भाग आड़ा काट कर उन्हें एक फ्रेम में फिट कर दिया, ऊपर दूरी की लेंस और नीचे पढ़ने की, है ना कमाल का आविष्कार। इस आत्मकथा के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है फिलाडेल्फिया में रविवार की सुबह थके भूखे उनके आगमन का वर्णन। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे 1748 में फिलाडेल्फिया सिटी काउंसिल के सदस्य बनेंगे। वे पेंसिल्वेनिया के गवर्नर बने और फ्रांस और स्वीडन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राजदूत भी थे। प्रिंट की दुकान चलाने, अमरीकी डाक प्रणाली की इंजीनियरिंग करने, अमरीका की पहली उधार लाइब्रेरी शुरू करने और अमरीकी क्रांति में मदद करने के बीच फ्रैंकलिन को नए उपकरणों का आविष्कार करने का भी समय था। लेकिन उससे भी अधिक ताजुब की बात यह है कि उन्होंने अपने आविष्कारों को कभी पेटेंट नहीं करवाया। आज जहां हम अपने हर एक छोटे से काम के लिए मान्यता के लिए तरसते हैं, उन्होंने गर्व से घोषणा की थी कि जो कोई भी उनके विचारों से पैसे कमाना चाहता है वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने अपने आविष्कारों को जनता के लिए उपहारों के रूप में देखा। जैसा कि हम दूसरों के आविष्कारों के लाभ से काफी आनंद लेते हैं, हमें अपने किसी भी आविष्कार से दूसरों की सेवा के अवसर से हर्षित होना चाहिए और ऐसा हमें मुफ्त रूप से और उदारता से करना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे 18वीं शताब्दी के सबसे सम्मानित और चुनिंदा अमरीकियों में से एक थे, लेकिन पश्चिमी दुनिया में भी वे सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थे। वह 19वीं शताब्दी के अनगिनत कारीगरों और स्वनिर्मित व्यवसायियों के नायक बन गए और जब 1790 में उनकी मृत्यु हुई तो 20,000 से भी अधिक लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वैसे यदि आपने अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइस, यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ, अमीर और बुद्धिमान बनाता है तो यह फ्रैंकलिन के पुअर रिचर्ड एल्मनैक से ही है, जो उनके द्वारा सामान्य हित में प्रकाशित एक पैम्पलेट है। इसमें पाठकों के लिए मनोरंजन के साथ साथ हाउ टू डू गाइड, व्यवहारिक सुझाव, कहानियाँ, ज्योतिषीय पूर्वानुमान और ब्रेन टीसर्स शामिल थे। अमरीकी फेडरल रिजर्व और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में बेंजामिन फ्रैंकलिन के पेपर करेंसी पैम्पलेट में दिए गए कॉन्सेप्ट आज भी उपयोग किए जा रहे हैं। फ्रैंकलिन ने अपने बेटे को अपने पूर्वजों और अपने जीवन की परिस्थितियों से परिचित करने के लिए यह आत्मकथा लिखी थी, लेकिन साल 1757 में उन्होंने इसे अधूरा ही छोड़ दिया और इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्यों को रिकॉर्ड नहीं किया। पुस्तक के अंत में वर्ष अनुसार एडिटर ने उनके जीवन के मुख्य घटनाओं को सूचीबद्ध किया है। आशा है कि आपको यह समीक्षा पसंद आई होगी और आप हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम पता तो जानते ही हैं। आप हमें books.com/subhashini@gmail.com पर उन पुस्तकों की सूची भेज सकते हैं जिनकी आप समीक्षा चाहते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। books.com के अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक सायोनारा।